શ્રવણ બેલગોળામાં પૂજ્યભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈની તારીખ 29/12/85ની તત્વચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 122.
આત્મા તો એક હે, તો એક આત્મા કે અંદર એક હી ઉપાદાન હે કે ઉપાદાન દો પ્રકાર કા હે? આત્મા કે અંદર અંદર નિમિત્ત તો પૃથક હૈ, લિમિટ તો જુદાઈ હૈ, અરે આત્મા એક હૈ. તો એક જો આત્મા હૈ ઉસમેં દો પ્રકાર કા ઉપાદાન હૈ કે ઉપાદાન એક જ પ્રકાર કા હૈ? એક ત્રિકાળેશ ઉપાદાન અને એક અનાદિકા ક્ષણિક અશુદ્ધ ઉપાદાન, દો પ્રકાર હૈ કે આત્મા એક હી પ્રકાર કા હૈ? શુદ્ધ ઉપાદાન રૂપ હૈ એક હી પ્રકાર હૈ યા અશુદ્ધ ઉપાદાન રૂપ એક હી પ્રકાર કા હૈ? એસા પ્રશ્ન કી ગુલાવટ ચલતી હૈ કે અનાદિ સે આત્મા બ્રહ્માંડ જ્ઞાન સે દેખો તો એક હૈ, નઈ વિવક્ષા સે દેખો તો આત્મા કા દો રૂપ હૈ, એક સામાન્ય ને એક વિશેષ, એક દ્રવ્ય રૂપ અને એક વર્તમાન પરિણામ રૂપ. તો આત્મા એક હૈ, ઉસકા દો પ્રકાર હૈ, એક ત્રિકાળી દ્રવ્ય જો અનંત ગુણાત્મક હૈ, જિસમાં અનંત ગુણ હૈ, વગર ઉસમે પરિણામ નહીં હૈ. પરિણામ પરિણામમાં હૈ, વગર પરિણામ ધ્રુવ પરમાત્મા મે નહીં હૈ. ત્રિકાળી દ્રવ્ય સામાન્ય હૈ, જો જ્ઞાયક ભાવ ચિદાનંદ આત્મા હૈ, વો ત્રિકાળી શુદ્ધ ઉપાદાન રૂપ હૈ, ઉસમે અશુદ્ધતા નહીં હૈ, અનાદિ અનંત શુદ્ધ હૈ. इसका नाम त्रिकाली शुद्ध उपादान कहा जाता है. उपादान का अर्थ स्वशक्ति का नाम उपादान है. स्व अपनी निजी जो शक्ति है इसका नाम उपादान है. तो ये आत्मा है, तो एक आत्मा का एक पहलू साइड परखा, त्रिकाली जो शुद्ध आत्मा है वो हमेशा त्रिकाल शुद्ध ही रहता है. एक समय मात्र भी वो अशुद्ध होता ही नहीं, होगा भी नहीं. इसका नाम त्रिकाली शुद्ध उपादान कहा जाता है. और जो त्रिकाली शुद्ध उपादान है वो अकारक अवेदक रहता है, अकर्ता अभोक्ता तीनों का. अभी त्रिकाली उपादान की बात चलती है, बाद में क्षणिक उपादान की बात आएगा. जैन दर्शन का हार्दय सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए ये विषय खास समझने जैसा है. जो त्रिकाली शुद्ध उपादान ज्ञानानंद आत्मा है, जो शुद्ध नई का जो विषय है, અબધ સ્પષ્ટ ભાવ આયા ને અભી 14મી ગાથા મેં. એસે જો ત્રિકાળી શુદ્ધ આત્મા હૈ, નિત્ય નિરાવરણ હૈ, વો ત્રિકાળ શુદ્ધ હૈ, વો અશુદ્ધ હોતા હી નહીં હૈ, વો ત્રિકાળ શુદ્ધ હૈ. વો જે ત્રિકાળ શુદ્ધ આત્મા હૈ વો અકારક અવેદક હૈ, જ્ઞાને અકર્તા અને અવેદક હૈ, અભોક્તા હૈ. અકર્તા અને અભોગતા ઉસકા ત્રિકાળ સ્વભાવ હૈ. કરતાપના ને ભોગતાપના વો ત્રિકાળી શુદ્ધ ઉપાદાન મેં નહીં હૈ. ક્ષણિક ઉપાદાન મેં કરતા ભોગતા કા ધર્મ હૈ. અભી વો ક્ષણિક કી બાત જબ આયેગા તબ વો બાત લેગા. અભી ત્રિકાળી ઉપાદાન જો હૈ તિનો કાલ એક રૂપ રહેતા હૈ, નિત્ય નિરાવરણ હૈ, અખંડ હૈ. वो तो अकारक में अवैध है, उसमें कर्तापना का स्वभाव नहीं है और भोक्तापना का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो आत्मा निष्क्रिय है. निष्क्रिय का क्या अर्थ है? कि बंध और मोक्ष की क्रिया त्रिकाली शुद्ध आत्मा में नहीं होती है, क्रिया होती है वो परिणाम में होता है क्रिया, वो भी दूसरा प्रकार जब आएगा ना तब वो भेद निकलेगा। तो ये आत्मा जो दृष्टि का विषय है, जो शुद्ध नहीं का विषय है, वो प्रकार अवेदक है। ऐसा आत्मा को आज तक अज्ञानी आत्मा ने जाना नहीं है, देखा नहीं है, इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मिथ्या तो है। अपना जो आत्मा जैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप को नहीं श्रद्धा में लाना, नहीं जानना, उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र है। तो आत्मा तीनों काल त्रिकाल शुद्ध उपादान है, वो निष्क्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है, और अकारक अवेदक है, अकर्ता अभोक्ता उसका स्वभाव है, और राग को करने वाला भी नहीं है, वितराग भाव को भी करने वाला नहीं है, और राग का फल जो दुख उत्पन्न होता है परिणाम में, उसका भोगने वाला आत्मा नहीं है, क्योंकि अभोक्ता है। दूसरा कि अतीन्द्रिय जब आनंद आता है, उसका भोक्ता भी आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निष्क्रिय होने से वो अकारक में अवेदक है, तीनों काल कर्ता भोक्ता उसका स्वभाव में नहीं है। और आत्मा त्रिकाली जो शुद्ध आत्मा उपादान है, त्रिकाली उपादान है, वो शुद्ध है, और राग और विद्राग भाव का कर्ता नहीं, क्यों नहीं है कि तद्रुपो न भवती, वो भगवान जो आत्मा है वो आश्रव बंध रूप होता नहीं है, इसलिए आश्रव बंध का कर्ता बनता नहीं है, माने उसका जो फल है आकुलता उस रूप होता नहीं है, इसलिए आत्मा दुख का अभोक्ता है। जो जीव मानता है कि मैं राग का करने वाला हूं, दुख को भोगने वाला मैं हूं, वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होने वाला उसको नहीं है, उसकी दृष्टि पर्याय पर है, वो पर्याय को क्षणिक अशुद्ध उपादान को आत्मा मान लिया तो त्रिकाली शुद्ध उपादान दृष्टि में से ओझल हो गया, दिखाई देता नहीं, पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि होता नहीं है। देव कुमार बात जरा सूक्ष्म है, अच्छी है, समझने जैसी चीज है। आत्मा कर्ता भोक्ता है, ऐसी बात तो सुना है अनंत काल से, काम और भोग की कथा तो अनादि काल से आत्मा ने सुनी है, परिचय भी है, ने अनुभव भी ऐसा ही है, मगर एकत्व विभक्त आत्मा की बात जो त्रिकाली शुद्ध उपादान की जो बात है, मूल बात है, जो आत्मा अकर्ता ने अभोगता है, ऐसी बात आज तक उसने सुनी भी नहीं, अने सुनी ऊपर पर से हो तो एक आने सुना एक आने निकाल के, तो निश्चय की बात है, निश्चय की बात करके ध्यान देता नहीं है। तो आत्मा राग का करता और दुख का भोगता क्यों नहीं है कि तद्रुपो न होती, वो राग रूपे आत्मा होता नहीं, इसलिए राग का करता नहीं है, और उसका फल जो आकुलता पर्याय में होता है वो पर्याय रूप द्रव्य होता नहीं, तद्रुपो न भवती, इसलिए आत्मा दुख का भोगता है नहीं। तो त्रिकाली शुद्ध उपादान की बात है, आनंद कुमार जी, पाटिल जी, पाटिल अपूर्व बात है, ये कुलकुल भगवान की देन है। कौन कहे कि संसारी जीव भी राग का करता नहीं है न दुख का भोगता नहीं है, आज तक उसने राग किया ही नहीं, दुख उसने भोगा भी नहीं, आज नारकी का जीव दुख को भोगता नहीं है, और निगोद के अंदर जीव जो है आत्मा, जिसका नाम आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और निगोद का जीव में जो आत्मा है वो वर्तमान परिणाम को भोगता नहीं है। ये छात्रिकाली शुद्ध पादान है, एक पुस्तक बार पढ़ गया है, अध्यात्म प्रवर्तन रत्नत्रय गुजराती में, अभी हिंदी में छपेगा, तो अपूर्व चीज है।
भद्रभाऊ स्वामी गुफा में आ लिख गया
जो अंगधारी था शुद्ध ज्ञानी बारंग का शुद्ध केवड़ी भद्रभाऊ स्वामी ने वो कहा है, ये क्षेत्र में कहा है, उसका कहा हुआ मैं कहता हूं, मेरी घर की बात है तो घर की बात तो
घर की बात,
क्योंकि ऐसा स्वरूप है। एक तो त्रिकाली उपादान का प्रश्न संक्षेप में आ गया। संक्षेप में उपादान दो प्रकार का, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। उपादान दो प्रकार का है, एक त्रिकाली उपादान जो है उसकी बात संक्षेप में किया टुकान, और अभी क्षणिक उपादान की बात के उपादान, क्षणिक उपादान परिणाम को क्षणिक उपादान कहा जाता है, परिणाम को परिणाम का नाम क्षणिक उपादान कहा जाता है, जो उसकी स्वशक्ति है, परिणाम में अपनी शक्ति है, वो परिणाम द्रव्य की शक्ति की अपेक्षा रखता नहीं है, यानी निमित्त की अपेक्षा भी रखता नहीं है, क्योंकि उसका नाम उपादान है। उपादान हमेशा निमित्त से निरपेक्ष ही होता है, क्षणिक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान का दो भेद, क्षणिक उपादान का दो भेद, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान और एक क्षणिक शुद्ध उपादान। तो अज्ञानी के पास क्षणिक अशुद्ध उपादान है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान ज्ञान में चारित्र पर्याय में है ने? उसका नाम क्षणिक अशुद्ध उपादान है। तो राग जो करता है जो भोगता है वो क्षणिक अशुद्ध उपादान राग को करता है, क्षणिक उपादान अशुद्ध उपादान दुख को भोगता है, भगवान आत्मा त्रिकाली शुद्ध उपादान उसको करता भोगता है नहीं। हा जब आत्मा ये राग रूप में प्रणमता है तो उपचार से आत्मा को राग का करता, उपचार से दुख को भोगता है ऐसा कहा जाता, उपचार से व्यवहार से कहा जाता है, मगर जो कहा जाता है ऐसा स्वरूप नहीं है। तो सर्वज्ञ भगवान ने भी कहा कि व्यवहार में से देखो तो आत्मा राग का करता है, उसका होता भी है, तो कौन से नहीं का कथन है कि व्यवहार नहीं का कथन है, तो उसमें प्रयोजन की स्थिति होती नहीं है। तो व्यवहार नहीं का कथन को गौण करके वो तो निश्चय नहीं का स्वरूप क्या है इसे समझने से आत्मा की कर्ता बुद्धि छूट जाती है, अकर्ता पर आने से आत्मा की अनुभूति होती है। ये जुआनियां भी हा पाड़े थे, बोलो आप बचवाड़े भाई बैठा बराबर
आप पढ़वा जी बात से।
तो क्षणिक उपादान दो प्रकार का है पर्याय, एक तो अशुद्ध उपादान जो अनादि काल से बहिर्मुख परिणाम होता है, कि देहादि मेरा है, राग मेरा है, होटल मेरा है, बंगला मेरा है, ऐसे जो ममत्व भाव प्रकट होता है उसका नाम क्षणिक अशुद्ध उपादान। क्षणिक है, एक समय की आयुष है, पर्याय की आयुष कितनी, आयुष इतना है, दो समय टिकता नहीं है, तो इसका अर्थ क्षणिक, क्षणिक यानी अनित्य, क्षणभंगुर, एक समय की पर्याय, तो उसका नाम अशुद्ध उपादान है। अशुद्ध उपादान मिथ्यात्व का परिणाम का करता है, मैंने मिथ्यात्व का परिणाम का जो फल आता है दुख, उसको कौन भोगता है, आत्मा भोगता है कि नहीं, शुद्धात्मा त्रिकाली शुद्धात्मा कर्ता भोक्ता का उसमें स्वभाव ही नहीं है, तो कर्ता आवेदक है, तो क्षणिक उपादान एक अशुद्ध है, वो मिथ्या तो है जहां तक ये अशुद्ध उपादान है। जब वेद ज्ञान करने से आत्मा की अनुभूति होती है तो एक नया क्षणिक शुद्ध उपादान प्रकट हो जाता है, सम्यक स्नान चारित्र परिणाम रूप। वो परिणाम को किसने किया, आत्मा ने किया कि नहीं, आत्मा तो अकर्ता ने अभोगता है, तो वो शुद्ध पर्याय का करने वाला कौन है? तो वो पर्याय में कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण जो क्षणिक उपादान है, क्षणिक उपादान में क्रिया का कारक होने से वो परिणाम परिणाम का करता है, त्रिकाली द्रव्य उसका करता नहीं है, इसे ज्ञान में प्रतिपादित होता है सम्यक ज्ञान में। तो वो परिणाम का नाम क्षणिक शुद्ध उपादान। तो सम्यक स्नान चारित्र वितरागी परिणाम किसने किया, आत्मा ने किया कि नहीं, त्रिकाली शुद्ध आत्मा तो कारक अवेलक है, तो कौन करता है? क्षणिक शुद्ध उपादान सम्यक स्नान चारित्र का परिणाम का करता है। तो वो आनंद आया उसमें पर्याय में, वो कौन भोगता है कि परिणाम जो करे सो भोगे, जो करे सो परिणाम, परिणाम का करता है, परिणाम का फल परिणाम भोगता है। तो उपचार से कहा जाता है कि आत्मा ने सम्यक दर्शन किया, आत्मा आनंद का भोगता है, ऐसा भी कहा जाता है। राग का कर्ता भोगता नहीं है ऐसा कहने के लिए निश्चय से वितराग भाव का कर्ता ने आनंद का भोगता निश्चय से है, मगर वो ज्ञान प्रधान निश्चय है, दृष्टि प्रधान निश्चय है, तो वो आनंद का कर्ता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, ऐसा त्रिकाली द्रव्य जो है उसके पर नजर करने से अशुद्ध उपादान का निवृत्ति हो जाता है क्षणिक, और क्षणिक शुद्ध उपादान प्रकट हो जाता है, तो धर्म की दशा प्रकट होती है। दो प्रकार का उपादान, समझ में आने की आशा,
क्षणिक उपादान का योग्यता है,
योग्यता बढ़िया है, पर्याय को योग्यता क्यों क्षणिक उपादान,
उपादान शब्द जितने कोई न करता
है, उपादान शब्द है वो निगले नो स्वयं छे, स्वयं सत छे, रागनी पर्याय पण स्वयं सत अहेतुक छे, अने वितरागी पर्याय प्रगट थाय ए पण सत स्वयं अहेतुक छे, एने कोई हेतु उपादान ने हेतु न होय। પ્રશ્ન ઘણો ટાઈમ આવ્યો,
સરસ પ્રશ્ન, મુખ્ય વાત
પ્રશ્ન બુદ્ધાનો હતો, હવે એક યુદ્ધિકાળી ઉપાદાન ને ક્ષણિક ઉપાદાન ની વાત કરી તો એક એમાં કોઈને આશંકા થાય, કે કોઈને શંકા બી થઈ જાય, તો એને માટે આધાર સમયસારનો છે, સમયસાર ની જયસેન આચાર્ય ભગવાને એક ટીકા કરી છે આજથી 700 વર્ષ પહેલા, એક અમરચંદ્ર આચાર્યની ટીકા અને બાદ મેં જયસેન આચાર્ય ભગવાનને ટીકા કર્યા, ઉસમેં અપની જો આત્મખ્યાતિ ટીકા કે 102 નંબર હૈ, ઉસમેં 102 નંબર દેખ લેના, વો ગાથા ખુદ ખુદ ભગવાને વહાં કભી 109 નંબર બતા હૈ, થોડા પાસે 109 હૈ, ઉસમેં તાત્પર્ય રતિ મેં આત્મખ્યાતિ મેં 102, तो वहां देख लेना कि जब आचार्य भगवान ने कहा कि वो तो अशुद्ध उपादान करता है राग का, आत्मा करता नेता, शिष्य ने प्रश्न किया, क्या आपने कहा अशुद्ध उपादान राग का करता है, तो क्या उपादान दो प्रकार का है, शिष्य ने प्रश्न किया, आचार्य महाराज फरमाते हैं क्या उपादान दो प्रकार का है, एक शुद्ध उपादान एक अशुद्ध उपादान अज्ञानी के लिए, ऐसे सर्वत्र जहां जहां उपादान की चर्चा आवे वहां दो प्रकार का उपादान से समझना चाहिए, 102 गाथा वैसा पाठ है, बाकी शिक्षा सीमा है 109 से 113 में भी है, 10, 11, 12, 13 चार गाथा में कई जगह पर वो उसने उल्लेख किया, मगर इधर तो खास उल्लेख है, सर्वत्र उपादान दो प्रकार का ऐसा समझना चाहिए।
काली उपादान आनंद का भोगता नहीं है, क्या आनंद का ज्ञाता है?
हाँ ज्ञाता है भोगता।
आनंद का जैसे स्वभाव है ऐसे ज्ञाता भी स्वभाव है, तो जिसके आनंद का भोगता नहीं है ऐसे ज्ञाता भी नहीं होना चाहिए?
ज्ञाता है।
क्रिया आ गई तो
ज्ञाता है, ज्ञाता है। ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में क्रिया होती है, वो क्रिया आत्मा ने नहीं किया है। क्या कहा? वो जो शुद्ध ज्ञान की क्रिया, केवल ज्ञान की क्रिया होती है ना, वो क्षणिक शुद्ध उपादान का धर्म है। ओ ज्ञान की पर्याय का करने वाला त्रिकाली शुद्ध उपादान नहीं है। मैं न्याय देता हूं अभी कि जो त्रिकाली शुद्ध उपादान ज्ञान की पर्याय का करने वाला हो तो शुद्ध ज्ञान क्यों प्रकट करे, केवल ज्ञान क्यों न कर दे? एक बात। दूसरा बात इसी की बात इसी कि आत्मा अकर्ता है, वो लक्ष्य में अनंत काल से लिया ही नहीं। ठीक है, अभी ये सिमंदर भगवान है तो 13वां गुण स्थान पर विराजमान है, अनंत ज्ञान अनंत से हो गया, मगर सिद्ध हुआ नहीं है। तो उसकी वाणी में आया कि 13वां गुण स्थान भी संसार है, गुण स्थान अतीत नहीं हुआ और असिद्धत्व का उदय है, सिद्ध था प्रगट तो इधर से भारत में से कई जीव ने, कर्ता बुद्धि वाला ने यह प्रश्न भेजा कि भगवान आप ऐसा एक काम कर दो कि सिद्ध पर्याय कर दो आप, क्योंकि 13वां गुण स्थान तक रहना और इधर 13वां तीर्थंकर जब होगा तब आपका मोक्ष होगा, हम आपको अच्छा से अच्छा काम बता दें। विनंती करता हूँ, अरे अच्छा काम किए। दूसरा, आपको अनंत वीर्य प्रकट हो गया तो सिद्ध पर्याय करना तो ऐसी रमत की बात है, अच्छा काम है तो सिद्ध पर्याय आप कर दो,
अभी कर लो,
कर लो अभी, एक कर लो, अब जो वर्ष चले जाए क्यों इधर शरीर में रहते हैं
हम, आपको नमो सिद्धारण करके जा रहे
हाँ,
आपको अभी से
अभी नमो अर्यतन करते हैं तो आपको नमो सिद्धारण कहेगा तो आपकी पद तो ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी सेठ, आप कर्ता बुद्धि नु जैन उतारा माटे उत्कट कृष्ण थे, वहां श्री दिव्य ध्वनि में आया उत्तर आया कि तेरा जो प्रश्न है अविवेक भरेला है, आत्मा सिद्ध पर्याय होवे तो जानने वाला है, बगैर करने वाला नहीं, जानना स्वभाव है, वो जानने में अकारक आवेदक आ जाता है, करने में और कर्ता बन जाता है। तो जानने की जो क्रिया होती है वो क्रिया का कर्ता भी निष्क्रिय नहीं है, क्रिया का कर्ता क्रिया है, पर्याय का कर्ता पर्याय है, क्योंकि क्रिया का कारक पर्याय में होता है, निष्क्रिय का कारक उद्रेय में रहता है। गुण सब निष्क्रिय है और परिणाम सब सक्रिय है, और निष्क्रिय और सक्रिय दो धर्म आत्मा में हो, प्रमाण ज्ञान से देखो तो दो आत्मा का धर्म है, प्रमाण ज्ञान से देखो तो क्या खेरी बात है। आपके पास एक पुस्तक आया कि नहीं, वो अध्यात्म प्रवर्तन रत्नत्र आपके पास नहीं आया? अच्छा, तो आप एड्रेस दे देना, एक एड्रेस मैं राजकोट में भेज दूँ, उसमें सब खुलासा है, आचार्य भगवान का खुलासा है, उसके ऊपर गुरुदेव का व्याख्यान हो गया, तो व्याख्यान ही छपा है गुरुदेव का साक्षात टेक ऊपर से अक्सर अक्सर व्याख्यान कर गया, वो पढ़ने जैसी थी, एक दफे नहीं सारी जिंदगी पढ़ने जैसी थी, बारह का सारे जो कर्ता पड़ा का अभिमान छुप जाता है। आपकी पास बुक आया कि नहीं आया? वहां चाहिए गुरुदेव कहते हैं कि दरकार नहीं है पैसे वाला
है,
है। है। जो भी जानता है कि आत्मा आकारक नहीं रह सके, वो भी तो जानता है कि मैं राग क्या करने वाला हूं, दुख का भोगने वाला हूं, भोगी है, अपूर्व चीज है। आत्मा को कर्ता मान बैठा है, अगर वो आत्मा कर्ता बनता नहीं तो कर्ता माने ने कर्ता बन जावे तो सम्यक दर्शन हो जावे। आत्मा कर्ता होने पर भी, ज्ञाता होने पर भी, अनादि काल से अपनी भूल से आत्मा को कर्ता मान बैठा है। वो आत्मा अपना अकर्ता अपना छोड़ता नहीं है, उसकी मान्यता से, अपनी मान्यता से। कोई पाड़ा का ध्यान करे, अरे पाड़ा पाड़ा में हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं पाड़ा, बेसा हो गया है? तो सब मान लिया, तो मान लिया तो क्या मनुष्य मिट गया, अरे बेसा हो गया, वो तो उसकी भ्रांति है। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञाता है होने पर भी, मैं राग का ने पर का करता हूं, कर्म का करता हूं, मैं साता असाता वेदनी का भोगता हूं। आ बड़ा विख्यात का दोष है, ज्ञाता है। हां परिणाम में कर्ता धर्म है, वो कर्ता का भी ज्ञाता है, यानी आत्मा अकर्ता है उसका भी ज्ञाता है। कर्ता धर्म है परिणाम में, बिल्कुल परिणाम में कर्ता नहीं है ऐसा नहीं है। कर्ता धर्म को भी जाने न अकर्ता धर्म को भी, और भोक्ता धर्म को भी जाने न अभोक्ता स्वभाव को भी जाने, जाने जाने जानते जानते भोग हो जाते। अभी प्रश्न गया, जो स्वयं से ही है तो क्यों उसकी शुरुआत नहीं होती रही? यानी जो आत्मा स्वयं से ही ज्ञाता है तो ज्ञाता रूप परिणमन की क्रिया शुरू क्यों नहीं होती है? क्या प्रश्न है? वो छोटा बालक का प्रश्न है, छोटा बालक का मोटा प्रश्न है, छोटा बालक का प्रश्न बड़ा है मोटा। क्या कि जो स्वयं से ही आत्मा केवल ज्ञाता है, केवल ऐसा स्वभाव है, तो स्वभाव तो प्रश्नकार ने स्वीकार लिया कि सहज स्वभाव तो ज्ञातापना है। तो ज्ञातापना होने पर भी वो ज्ञान रूपे क्यों नहीं परिणमता है, निकर्ता बुद्धि रूप क्यों परिणमता है? शुरुआत ज्ञान की, शुरुआत सम्यक ज्ञान की शुरुआत क्यों नहीं होती है? सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता है? आत्मा का स्वभाव ठंडा है तो ठंडा क्यों नहीं हो जाता है, उष्ण क्यों रहता है? पानी का स्वभाव शीतल ठंडा है तो उष्ण क्यों रहता है, शीतल क्यों नहीं हो जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो आत्मा ज्ञाता है तो ज्ञाता रूप परिणमन क्यों नहीं होता है? कि ज्ञाता हूं वो ज्ञाता की सन्मुख होकर वो अनुभव नहीं करता है तो कर्ता बन जाता? ज्ञाता तो है मगर श्रद्धा ज्ञान में अनुभव पूर्वक ज्ञाता आना चाहिए, वाणी में ज्ञाता नहीं हो रहता है। जड़ पर्याय जो भाषा वर्णना है उसमें ज्ञाता का अस्तित्व नहीं है, और विकल्प में भी ज्ञाता का अस्तित्व नहीं है, और इंद्रिय ज्ञान है उसमें भी ज्ञाता का अस्तित्व नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा मैं ज्ञाता हूं तो ज्ञाता रूपे ज्ञान रूपे सर्व ज्ञान रूपे आत्मा बन जाता, यानी अर्थार्थ यथार्थ रूप में ज्ञाता का स्वीकार किया ही नहीं। वाणी मेरे ज्ञान मैं ज्ञाता हूं, वाणी का काम नहीं है। फिर से जो स्वयं से ही है इसलिए ज्ञाता है, ज्ञाता इसमें नहीं लिखा है मगर स्वयं से ही ज्ञाता है तो क्यों उसकी शुरुआत नहीं होती ज्ञान की शुरुआत? अज्ञान कैसे प्रकट आए थे? क्योंकि ज्ञाता का अंदर अंदर मुख होकर जो श्रद्धा ज्ञान में लावे तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। દસ મિનિટ છે પૂર્ણ. એક પરિણામ નો વ્યય થઈને અભેદ ઉપચાર ઉપચારિત્ર થાય છે, એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન ચારિત્રની પરિણતિ પ્રગટ થાય છે. અને અભેદ ઉપચારને અભેદ અનુપચાર કરું છું એટલે પરિણામને દ્રવ્યમાં અભેદ કરીને એ આત્મા થઈ જાય છે. શું કહ્યું? ભેદ ઉપચારને અભેદ ઉપચાર કરું છું એટલે પાંચ મહાવ્રતના પરિણામ જે પ્રગટ થાય છે એને ભેદ ઉપચાર કહેવાય. ભેદ છે વ્યવહાર ખંત્રીના પરિણામ, એ જ્યાં ઉપયોગ સ્વભાવમાં લીન થાય છે ત્યાં ભેદ ઉપચાર ટળીને અભેદ ઉપચાર થાય છે. અભેદ ઉપચાર અને અભેદ ઉપચારનો અભેદ અણુપચાર થઈ જાય છે, એટલે કે જે પરિણામના ભેદ દેખાય છે એ અભેદ થઈને આત્માનું થાય છે. પછી કાંઈ આ મોક્ષ માર્ગ ને આ મોક્ષ માર્ગનો વિષય એવો કઈ ભેદ દેખાતો નથી. દૈવિક ધ્યાન થઈ જાય છે, ઓલી પરિણતિ મારીએ છે, પછી પરિણતિ સદુપયોગ થાય છે ત્યારે અભેદ અણુપચાર ઉપચારિત થઈ જાય છે. બોલો.
ગાથા 47માં સહજ નિશ્ચય નહીં, ગાથા 47માં સહજ નિશ્ચય નહીં થી સહજ જ્ઞાન સહજ દર્શન.
કઈ ગાથા?
43
ગાથા.
નિયમ સાર
અહીંયા નિયમ સાર છે. કાલ પૂછજો નિયમ સાર નિયમ સાર નિયમ સાર છે અહીંયા નિયમ સાર અપ્રમત દશા એટલે એનો વિસ્તાર. પ્રમત દશા એટલે આત્માની અસાવધાન દશા, એટલે બહિર્મુખ પરિણામને પ્રમત દશા કહેવાય. પ્રમાદ અસાવધાની શુદ્ધ આત્માની સન્મુખ થઈને શુદ્ધ ઉપયોગ થવો જોઈએ. અપ્રમત દશા એ ન થાય તો ત્યાં સુધી પહેલાનું સ્થાન બીજે ત્રીજે ચોથે પાંચમે છઠ્ઠે ત્યાં સુધી એને પ્રમત દશા કહેવામાં આવે છે. એ વખતે ચોથે થી છઠ્ઠાનું સ્થાનની જે શુદ્ધ પરિણતિ છે એ ગૌણ છે ત્યાં, અને જેટલો પ્રમાદ દશા છે અસાવધાન દશા એને એક થી છ નું સ્થાનના પરિણામને પરમાત્મા પ્રમત પ્રમાદ દશા કહે છે. એ પરિણામ છે ગુણ સ્થાનના. પછી અપ્રમત અ એટલે નહીં, પ્રમાદ જ્યાં નથી ત્યાં પ્રમાદ નથી. એ સાતમા ગુણ સ્થાનથી આત્મા આત્માનું જયારે ધ્યાન કરે છે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જામી જાય છે ત્યારે સાતમા ગુણસ્થાનના બીજા ભાગથી શ્રેણી માંડતા સાત આઠ નવ દસ બાર તેર ચૌદ એ ચૌદે ગુણ સ્થાને અગિયાર ગુણ સ્થાન આવી જાય અનુરૂપ સમ તો એ ગુણ સ્થાનને અપ્રમત દશા કહેવામાં એટલે નહીં. અને પ્રમાદ એટલે અસાવધાન નહીં પણ સાવધાની છે, જ્યાં ઉપયોગ આત્મામાં લીન થઈ જાય છે એને જાગ્રત અવસ્થા કહેવામાં આવે છે, અપ્રમાદ દશા કહેવામાં આવે છે. અપ્રમત એકથી છ ગુણ સ્થાનની દશાનું નામ પ્રમત, અને સાતમાંથી ચૌદ ગુણ સ્થાનના પરિણામને એ આત્માના પરિણામ છે. એ પરિણામના બધા નામ છે મિથ્યાત્વ સાસાધન વિશ્વ અવર દેશ્વર પ્રમત અપ્રમત એ બધા એના નામ છે, પરિણામના નામ. એ પરિણામથી આત્મભિન્ન છે એવા આત્માનું લક્ષ કરતા દ્રષ્ટિના ઉપદેતા એનું ધ્યાન કરતા આત્માને સમ્યક દર્શન થાય છે.
શુદ્ધ ઉપયોગ અપ્રમત દશા, શુદ્ધ ઉપયોગ
એટલે શુદ્ધ ઉપયોગને જ અપ્રમત દશા કહી. ચોથે પાંચમે શુદ્ધ ઉપયોગ આવે છે પણ એ ગૌણ છે, ત્યાં એની રાગની મુખ્યતા લીધી એટલે પ્રમાદ કર્યો પ્રમત દશા.
પરિણતિ હોવા છતાં
પરિણતિ છે પણ શુદ્ધ ઉપયોગ સાતમે આઠમે જે જામે છે એવો ઉપયોગ નથી, કમજોર છે ત્યાં ફટબાર ઉપયોગ આવી જાય છે. તેથી તેને એક થી છ ગુણતાને પ્રમત કર્યું, પ્રમાદ. કેટલા વાગ્યા?
પાંચ
પાંચ મિનિટ. એકાદો પ્રશ્ન યાદ.
પૃથ્થકરણ સાવકાચારમાં એમ કહ્યું કે શુદ્ધ જ્ઞાન વિના ચારિત્રની ઉત્પત્તિ હોતી નથી, તેથી ચારિત્રની અપેક્ષા એ શુદ્ધ જ્ઞાનની પ્રધાનતા છે.
શુદ્ધ જ્ઞાન એટલે આત્માનો અનુભવ, શાસ્ત્ર જ્ઞાન નહીં. શું કહ્યું? બરાબર. શુદ્ધ જ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન, અનુભવરૂપ જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન. જે શુદ્ધ જ્ઞાન વડે શુદ્ધાત્માની પ્રતીતિ થાય એવા શુદ્ધ જ્ઞાન વિના એકલા શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી ચારિત્ર પ્રગટ થતું નથી. એમ શાસ્ત્ર જ્ઞાન એ ચારિત્રનું કારણ નથી, આત્મજ્ઞાન એ ચારિત્રનું કારણ થાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન એટલે ભાવશુદ્ધ જ્ઞાન. પ્રશ્ન: નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ હોને કે બાદ આત્માનો નિર્વિકલ્પ અનુભવ થાય છે જ્યાં બુદ્ધિપૂર્વક રાગ દ્વેષ અને મોહની ઉત્પત્તિ થતી નથી અને અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થાય છે એવી નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ હોને કે બાદ પછી સાધક સંતો દશામાં આવી જાય છે, ધ્યાનમાં મગ્ન રહેવાતું નથી, સંતો દશા આવે છે. તો બાદ સવિકલ્પ દશા મેં ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપયોગરૂપ હોતા હૈ, જયારે સવિકલ્પ દશા આવી ત્યારે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો વ્યાપાર ઉપયોગરૂપ હોય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયની સન્મુખ હોય છે, કા મનની સંબંધે વિચાર ચાલતો હોય તેને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, હોતા હૈ. પછી આ ભી છે કે ઈ સમજાતું નથી, હોતા હૈ. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન હિ ઉપયોગરૂપ રહેતા હૈ યા, અચ્છા સમજાવ, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપયોગરૂપ હોતા હૈ યા અતિન્દ્રિય જ્ઞાન હિ ઉપયોગરૂપ રહેતા હૈ? નહીં, જયારે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપયોગરૂપ છે ત્યારે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપયોગરૂપ નહીં રહેતા હૈ, લબ્ધરૂપ રહેતા હૈ, પરિણતિરૂપ રહેતા હૈ. એક સાથ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ભી હો અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઉપયોગરૂપ હૈ એસા નહીં, મગર પરિણતિરૂપે શુદ્ધ ઉપયોગ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અંદર મેં આત્મા કે આશ્રય સે પ્રગટ હુઆ વો જાતા નહીં હૈ.
લબ્ધ ઉપયોગ જે સંસ્કાર કહી શકાય,
સંસ્કાર નહીં, એ તો પ્રગટ છે, પ્રગટ છે, આનંદ નો અનુભવ આવે પ્રગતિનો. સંસ્કાર તો મનની અંદર એવા અમુક પ્રકારના સંસ્કાર થાય છે કે સંસ્કારના બળે પણ જીવ એને નિસર્ગ છે, પ્રગટ દેશના લગ્નના સંસ્કાર હોય, વર્તમાનમાં જ્ઞાની ન મળે તો ગુરુના સંસ્કારથી એને આત્માનો અનુભવ થાય, એને નિસર્ગ છે કહેવામાં આવે છે.
સંસ્કારનું અસ્તિત્વ ક્યાં?
પર્યાયમાં.
પર્યાય તો વિલય થઈ ગયો છે,
વિલય થઈ જાય છે, પણ એ બીજી પર્યાય ત્રીજી પર્યાયમાં એ પ્રકારે એની યોગ્યતા એવી છે કે જાણેલું જણાઈ જાય છે, સાંભળેલું અવ્યક્ત પણ યાદ આવી જાય. ભારતીય ક્ષેત્રમાં દેશના લગ્ન સાંભળી, હવે જે સાંભળી પર્યાય એનો તો વ્યય થયો, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો એ તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અહીંયા લાવ્યા નહીં, સમજાણું. પણ જે સાંભળેલું છે રૂચિપૂર્વક એના જે સંસ્કારો અંદરમાં જે હતા એવી જ વર્તમાન પર્યાય પ્રગટ થાય છે, પર્યાય નવી પ્રગટ થાય છે. પૂર્વની પર્યાય સંસ્કાર નવી પર્યાયમાં નાખે છે, બહુ જ લોકો કહે છે એવો સંસ્કાર નથી. બહુ જૈન કહે છે કે પૂર્વની પર્યાય જે સંસ્કાર હોય એ પછીની પર્યાયમાં સંસ્કાર નાખી અને વ્યય થાય છે, એમ છે નહીં. પણ વર્તમાન જે પર્યાય એવી જ કોઈ યોગ્યતા પ્રગટ થાય છે કે પૂર્વનું એને સ્મરણ પણ કેટલાકને આવી જાય જાતિ સ્મરણ, અને કેટલાકને અવ્યક્ત પણે પણ જે સાંભળેલું હોય ઓહો મારો આત્મા તો અકારક નવે જ્ઞાતા, પરિણામ માત્રથી મારો આત્મા ભિન્ન છે એમ જાણીને પણ તમે દર્શન થઈ જાય છે.
તે જૈનિઝમ પર્યાય સ્વતંત્રતા પૂરવાર,
સ્વતંત્રતા
પેલામાં
પરાધીનતા નહીં, એ બૌદ્ધ લોકો એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. કેમ કે પરિણામ માત્રમાં અન્વયરૂપ આત્મા રહેલો છે અને એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય અન્વયરૂપ છે એવી સ્વીકારતા નથી, એટલે પર્યાયનો સંસ્કાર બીજી પર્યાયમાં નાખે છે એમ આવે છે. આ તો પ્રતિબિજ્ઞાનનું કારણ જે પૂરો પર્યાય રૂપે પરિણમો ઈ જ આત્મા વર્તમાનમાં પરિણમે છે. આત્મા એકનો એક હોવાથી એને સ્મરણ આવી જાય છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ એવું છે કે જે પૂર્વે સાંભળેલું હોય પર્યાય તો ગઈ, પણ એ પર્યાયમાં જે આત્મા હતો અને વર્તમાન પર્યાયમાં પણ એનો આત્મા છે એટલે એને તદ થઈ જાય. આત્મા બીજો નથી,
એમાં રૂચિપૂર્વક સાંભળેલું હોય
તો બાકી ઉપર ઉપરથી હોય તો વ્યુ જાય.
એટલે નિસર્ગ સંવેદનનું કારણ
રૂચિપૂર્વક એટલું તો નહીં, પણ એને અમુક પ્રકારની વિશિષ્ટ પ્રકારનો નિર્ણય પણ કરી લીધો હોય. પણ નિર્ણય પછી અનુભવ ને જ્યાં આવવાનું થાય ને આયુષ પૂરું થઈ જાય તો અહીંયા પાછો અનુભવ થઈ જાય. નિસર્ગ કહેવામાં આવે અધિગમને નિસર્ગ સાંભળીને સમયદર્શન થાય અને પૂર્વે સાંભળેલું હોય અને વર્તમાનમાં પુરુષાર્થ સ્વભાવ નિસર્ગ કરે તો સમયદર્શન થઈ શકે. ઓ તો ઈ જ